हरे कृष्णा। तो आज फिर से एकादशी है और जैसे हम पिछले कई एकादशियों से करते आए हैं, श्री संप्रदाय के महान वैष्णवों की चर्चा हो रही है, वैसे आज का दिवस पुत्रदा एकादशी का दिवस है। वैसे देखा जाए तो ये नाम इसलिए आता है कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुकेतुमान और उनका कोई पुत्र नहीं था और बड़े उदास थे इसके लिए। और फिर एक दिन निराश अवस्था में जब वो जंगल में गए थे तो घूमते फिरते पाने की खोज में वो एक आश्रम में पहुंचे जहां कई साधु वहां पर अपने आध्यात्मिक क्रियाओं को कर रहे थे। साधुओं ने सलाह दिया कि आज तो पुत्रदा एकादशी है, तुम अच्छे दिन पर आए हो, आज के व्रत का पालन करो, आज उपवास करो और दिन भर भजन करो और तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी। और फिर अगले दिन तक वहां पर रहे राजा सुकेतुमान और फिर थोड़े ही समय बाद उनकी रानी गर्भवती हुई और उनको संतान उत्पन्न हुआ। तो वैसे देखा जाए तो ये एक कर्मकांड की बात है, इसलिए जो अलग अलग शास्त्रों में ये बताया जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से ये लाभ होगा, उस एकादशी का पालन करने से दूसरा लाभ होगा, भक्तों को इन भौतिक चीजों में वैसे ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि चाहे पुत्र हो न हो, धन हो या न हो, भक्त जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना और भक्ति भौतिक चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है। और भक्त जो होते हैं वो अपने पुत्रों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं उनके उद्धार के लिए, या कि वो आगे चल के श्राद्ध करेंगे और हमको नरक से बचाएंगे, तो ऐसे भक्त अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि अपने भक्ति के बल पर ही, भगवान की कृपा से ही वो भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन एकादशियों का वर्णन जो है कभी कभी जब हम सुनते हैं तो हमें इस दृष्टि से लेना चाहिए, हमारे लिए तो एकादशी केवल भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में ज्यादा श्रवण कीर्तन करने के लिए, थोड़ी तपस्या करने के लिए हम इस दृष्टि से देखते हैं एकादशी को। वैसे जो कर्मकांड में पुत्रदा एकादशी कहलाया जाता है, दक्षिण भारत में और अन्य जगह भी इसको वैकुंठ एकादशी कहा गया है, क्योंकि हम श्री संप्रदाय या आलवारों की चर्चा कर रहे हैं तो संक्षेप में चर्चा करें कि श्री रंगम जो कि श्री संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है तिरुपति के साथ साथ, तो वहां किस तरह से मनाते हैं। वैकुंठ एकादशी का महोत्सव बहुत धूमधाम से श्री रंगम में मनाया जाता है, तिरुपति में भी। श्री रंगम में 20 दिन का उत्सव चलता है, दो भाग होते हैं, 10 दिन और फिर 10 दिन। और वैकुंठ एकादशी का दिवस जो है, मतलब आज का दिवस, वो दूसरे 10 दिन का पहला दिवस होता है। और इस दौरान लाखों की संख्या में लोग न केवल भारत की जगह जगह से लेकिन विदेश से भी आते हैं। हर दिन श्री रंगनाथ जो वहां रंगराजन बन के आते हैं, राजा के रूप में आते हैं, रंगराज सिंहासन पर बिठाकर उनको बाहर ले आया जाता है और उनके केवल रत्नों के वस्त्र होते हैं, बहुत ही मूल्यवान ऐश्वर्यशाली रूप उनका होता है, उनकी रोज शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो बाहर दर्शन देने के लिए आते हैं, तरह तरह के संगीत के और अन्य ऐसे सांस्कृतिक, भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जो अलग अलग कलाओं में निपुण हैं वो अपने अपने कला भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करते हैं। पीढ़ियों से ऐसे कई लोग रंगनाथ की सेवा में हैं। आप श्रीरंग में जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे कितने पीढ़ियां हैं जो एक तरह का वाद्य बजाते हैं। बस वो वाद्य बजाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को भी सिखाएगा वही काम, और वो भी रंगनाथ जी के लिए वही वाद्य बजाएगा। ऐसे पीढ़ियों से पीढ़ियों चलते आए हैं, और फिर वो रंगनाथ देव के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो भी वहां से उत्पन्न उनको उनको उनका उनके भरण पोषण के लिए मिलता है वो उससे संतुष्ट रहते हैं। साथ साथ में अलवार और जो आचार्य हुए जैसे नाथ मुनि, यामुन आचार्य, रामानुज आचार्य इत्यादि, इनके सामने रंगनाथ जी आते हैं, अर्थात इनको रंगनाथ जी के सामने लाया जाता है। और नालायो दिव्य प्रबंधम, जो आलवारों की रचनाएं हैं, उनकी सुंदर स्तोत्र हैं, उनके उच्चारण किए जाते हैं रंगनाथ देव की प्रसन्नता के लिए। और इस तरह से बड़े हर्ष उल्लास से ये साक्षात वैकुंठ धाम हो जाता है। वैसे तो श्रीरंगम या कोई भगवान का स्थान, कोई मंदिर, वो तो वैकुंठ है ही, परंतु खास करके उत्सवों के समय हमें ये प्रतीत होता है, अनुभव होता है। आपने अनुभव किया होगा जब यहां पर भी जन्माष्टमी जैसे उत्सव होते हैं, एक कितना सुंदर वातावरण यहां पर निर्माण हो जाता है। कथा होती है, कीर्तन होते हैं, कोई नाट्य लीला होते हैं, भगवान के सुंदर दर्शन होते हैं, सब जगह श्रृंगार है, सजाया हुआ है मंदिर फूलों से और शुभ चीजों से। तो इस तरह से आज के दिन पे खास करके और इन 20 दिनों में बहुत ही आनंद का वातावरण रहता है, साक्षात वैकुंठ हो जाता है श्रीरंगम इन दिनों में, और कई भक्त जाते हैं वहां पर। तो दक्षिण भारत में खास करके इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो खैर, आलवारों की चर्चा भी और जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार हम पहले 3 आलवारों की चर्चा कर चुके थे, पोइग्याय आलवार, भूतम आलवार और पेय आलवार। इनकी सुंदर कथाएं हम सुन रहे थे, किस तरह से वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, परंतु भगवान की योजना से एक छोटे से कमरे में एकत्र आए, उनकी पहली बार पहचान हुई, और कैसे एक व्यक्ति के लिए सोने के लिए जगह थी उस कमरे में, 2 व्यक्ति के लिए बैठने की और 3 व्यक्ति के लिए खड़े होने के लिए, एक एक करके आलवार वहां आते गए, और फिर भगवान ने मौका देखा और वहां अंदर आके घुस गए उनके बीच में, और फिर आलवारों को पता चला कि स्वयं भगवान हमारे बीच आए हैं। तो भक्तों की कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन से आकर्षित होकर भगवान स्वयं भक्तों के संग में आना पसंद करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता यही है, केवल भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करते रहना, भगवान का गुणगान करना। तो ये विस्तार में ये कथा हम सुन रहे थे, ये भी सुन रहे थे कि इनका परिचय वास्तव में क्या है। ये तो सब भगवान के अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के अवतार हैं, जैसे यहां पढ़ सकते हैं कि पोइग्याय आलवार भगवान के शंख के अवतार माने जाते हैं, भूतम आलवार भगवान के गदा कौमोदकी के अवतार माने जाते हैं, और पेय आलवार भगवान के तलवार या नंदक के अवतार माने जाते हैं। तो ये 3 आलवार, प्रथम आलवार, ये सब द्वापर युग के अंत में रहे, पयस्विनी नदी के तट पर रहे, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है, और इस तरह से वो जगह जगह घूमकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। आज और अगली बार हम चौथे आलवार की चर्चा करेंगे, जिनका नाम है तिरुमलिशई आलवार। वो भी चौथे आलवार माने जाते हैं। पहले 3 आलवार जिस समय पर रहा करते थे, करीब करीब उस समय ये भी रहा करते थे, और प्राय उसी प्रांत में उनका भी जन्म हुआ। वैसे तिरुमलिशय अलवार उम्र में इनसे काफी बड़े थे। जब पहली बार तिरुमलिशय अलवार पेवे अलवार से मिले, जो आगे चल के उनके गुरु बने हैं, तिरुमलिशय इनकी उम्र 700 साल की थी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आजकल के जमाने में 100 साल भी जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस साल में द्वापर के अंत में ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो फिर उनकी मुलाकात हुई, वो भी भक्त बने। पहले वो योगी थे, हम चर्चा करने वाले हैं आज किस तरह से उनका परिवर्तन हुआ। और उनका जन्म भी बड़ा अद्भुत था, अलौकिक था, जैसे कि अन्य तीन अलवारों का भी हुआ था। आप तो जानते हैं कि पहले तीन अलवारों का जन्म कैसे हुआ था, फूलों से, अलग अलग तरह तरह के फूलों से हुआ था उनका जन्म। और पवित्र स्थानों में जहां पर भगवान विष्णु के मंदिर हैं, वहां पर वह प्रकट हुए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो तिरुमलिशय अलवार ये भगवान विष्णु या कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे और बार बार करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, हर एक कण में चेतना है, पानी में, पत्थर में, पत्ते में, हवा में। तो फिर भगवान के जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनमें कैसे भला चेतना नहीं हो सकती है। तो ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए ये तरह तरह के रूप इत्यादि स्वीकार करते हैं। तो तिरुमलिशय अलवार, उनका जन्म का स्थान है एक स्थान मद्रास शहर के, जो आज आधुनिक काल में मद्रास के नाम से जाना जाता है, उसके पास में तिरुमलिशय। तिरुमलिशय से उनका नाम आया, तिरुमलिशय अलवार। वैसे इसका प्राचीन नाम है महिसार, बहुत प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है ये। यहां पर विदेह राजा, विदेह वंश के राजा यहां पर आके तपस्या करते थे, यहां रहा भी करते थे, आध्यात्मिक क्रियाओं को, यज्ञों को संपन्न किया करते थे। यहां पर काफी पावन भूमि है ये। तो एक बार हुआ ये, ऐसे ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि कई ऋषि, जिनमें से भृगु मुनि, भार्गव ऋषि, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि ऐसा कोई स्थान हमें बताइए पृथ्वी लोक पर जो बहुत पवित्र हो, जहां हमारी तपस्या, हमारे जो आध्यात्मिक कार्य हैं, वो भंग नहीं हो जाएं, और हमारे लिए कोई उपयुक्त स्थान आप हमें बताइए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने काफी सोच विचार किया और उन्होंने देखा कि महिसार तीर्थ को उन्होंने तराजू के एक तरफ रखा और सारे पृथ्वी को दूसरी तरफ, तो महिसार का वजन जो है वो ज्यादा था। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप महिसार में जाके तपस्या कर सकते हैं। तो सारे ऋषि मुनि वहां पर गए, काफी समय तक तपस्या करते रहे, कई युग बीत गए। उधर भार्गव मुनि के पास एक देवलोक की अप्सरा आई। आप तो जानते हैं कि जब भी कोई ऋषि मुनि ज्यादा तपस्या करते हैं तो देवलोक के निवासी और विशेषतः इंद्रदेव थोड़े तनाव में आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद मेरा पद जो है वो खतरे में है। तो एक अप्सरा आई वहां पर जिसका नाम था कनकांग, और उन्होंने भार्गव ऋषि को मोहित कर लिया और इस तरह से वो गर्भवती हुई। 12 महीने उनका बच्चा जो है उनके पेट में रहा, बाहर ही नहीं आया। और जब उस गर्भ का जन्म हुआ तो दोनों भार्गव ऋषि और कनकांग को आश्चर्य हुआ ये देखकर कि यह बच्चा नहीं था बल्कि मांस का एक टुकड़ा था केवल, पैर नहीं, हाथ नहीं, कुछ नहीं वहां। तो बड़े निराश हुए कि क्या किया जाए। तो फिर वो जंगल में गए और जंगल में वहां पर बांस के थोड़े झाड़ियां थीं, उसके पास में उसको रख के वहां से निकल आए। पृथ्वी माता ने इस मांस के टुकड़े का पोषण किया, इसका संरक्षण किया और भगवान विष्णु की कृपा भी इसके ऊपर हुई। धीरे धीरे से जैसे इसके हाथ पैर निकले तो शायद बच्चे को भूख लगी होगी, भूख के मारे बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो भगवान विष्णु ने वैकुंठ में इसकी, इस बच्चे की रोना, जो रोना है वो सुन लिया और नीचे आ गए महिसार क्षेत्र में। और बच्चे के रोना को रोते हुए देखकर उन्होंने, उनके मन में बड़ी कृपा आई और बच्चे के ऊपर बड़े प्रेम भरे आंखों से देखते हुए उन्होंने वरदान दिया उस बच्चे को कि कभी उसे भूख और प्यास नहीं लगेगी, उसे कोई पोषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर भगवान विष्णु वहां से चले गए। भगवान विष्णु की कृपा से इस मांस के टुकड़े को अच्छे हाथ, अच्छे पैर इत्यादि अन्य शारीरिक अंग जो हैं वो प्रकट हो गए। जब ये बच्चे ने भगवान विष्णु को देखा तो हृदय के अंदर बड़ा आनंद का अनुभव किया। उस बच्चे ने आज तक आंखें खोली नहीं थी। पहले व्यक्ति जिन्होंने, जिनको कि उन्होंने देखा था वो भगवान विष्णु थे। और जब कोई किसी व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है साक्षात, तो भला वो इस दर्शन को कैसे भूल सकता है। और भगवान ज्यादा ज्यादा समय के लिए दर्शन नहीं देते हैं, एक क्षण के लिए प्रकट होते हैं भक्तों के सामने और फिर निकल जाते हैं। जैसे भागवत में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के सामने भी जब भगवान प्रकट हुए, जबकि उनका जन्म हुआ था और वो भ्रमित हो गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना चाहिए, उस समय भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन केवल इतने समय के लिए जितने पलकों को बंद करने के लिए लगता, खोलने के लिए लग जाता है। फिर भगवान ओझल हो गए। ठीक उसी तरह से इस बच्चे के सामने भी आए थोड़े क्षणों के लिए, फिर भगवान अदृश्य हो गए। तो बच्चे ने तो एक बार देख लिया था भगवान को। अब भक्ति में वैसे देखा जाए तो कोई भौतिक बंधन नहीं है, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, शिक्षित अशिक्षित, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं और भक्ति का प्रभाव भी हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो ये छोटा बच्चा जो था, इसके ऊपर इस दर्शन का प्रभाव इतना पड़ा कि जैसे ही विष्णु ओझल हो गए तो विरह की भावना इतनी तीव्र हो गई उस बच्चे के अंदर कि वो जोर जोर से रोने लगा। आपको याद होगा कि परीक्षित महाराज भी जब अपने मां उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, कुरु वंश के आखिरी वंशज को खत्म करने के लिए, तो उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, जबकि उत्तरा भागकर श्री कृष्ण के पास त्राही त्राही कहकर आ गई कि मुझे बचाओ। उत्तरा भी भगवान कृष्ण की भक्त थी, जैसे कि सारा पांडव कुल था। और उस समय बच्चे ने अपने मां के गर्भ में एक ऐसे बड़े सुंदर रूप को देखा, चतुर्भुज रूप, जो कि गर्भ में अंदर गोल 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 घूम रहा था, बड़ा तेजस्वी प्रकाशमान रूप। और जब भगवान ने संकट को नष्ट कर दिया, संकट मोचन, तो फिर बच्चा देखता रह गया, कहां गए भगवान, कहां गए वो व्यक्ति। वो तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है, क्योंकि बुद्धि इतनी विकसित हुई नहीं थी। लेकिन बाहर जन्म लेते हुए भी ढूंढ रहे थे, कहां है वो व्यक्ति जिनको मैंने गर्भ में देखा था। इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षा करते रहे। तो इसी तरह से यह इस बालक को भी बहुत बुरा लगा कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने आए कहां चले गए। वो जब वो मेरे सामने आए थे तो मुझे इतना आनंद लगा था, इतना आनंद हुआ मुझे, और अब वो चले गए हैं यहां से। तो जोर जोर से वो बच्चा रोने लगा। अब रोने की आवाज जंगल में फैल गई। जंगल के भीतर तिरुवलन नाम का एक गरीब आदमी अपने मित्रों के साथ आया था। तिरुवलन का काम था कि वो पेड़ काट कर, डालियों को काट कर वो बेचता था, लकड़ी का व्यापार करता था और इस तरह से अपनी जीविका संभालता था। तो उसने सुना कि अरे ये क्या आवाज आ रही है, कहां से आ रही है, क्या है ये। तो अपने साथियों के संग वो चल पड़े उस आवाज की ओर, और जब उस बांस के झाड़ियों के बीच में वहां आ गए तो उन वो आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि यहां तो एक सुंदर बच्चा है। नाजुक ढंग से उन्होंने उस बच्चे को उठाया जो कि बहुत सुंदर था, और तुरंत उसको अपने घर ले गए, अपने पत्नी के पास। अब दोनों तिरुवलन और उनकी पत्नी, इनकी उम्र काफी हो गई थी परंतु उनको कोई पुत्र या कोई संतान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। जब तिरुवलन की पत्नी ने देखा कि ये सुंदर बच्चा यहां आया है तो उनको बड़ा आनंद आया, और वात्सल्य का स्नेह उनके हृदय में उभर आने की वजह से उनके स्तन में दूध भी आने लगा। ये शारीरिक परिवर्तन भी उनमें होने लगा, हालांकि ये बच्चा उनका नहीं था। जब उन्होंने इस बच्चे को स्तनपान कराने का प्रयत्न किया तो बच्चे ने मना कर दिया, बच्चे ने पिया नहीं। तो दोनों माता पिता को आश्चर्य हुआ कि क्या कारण हो सकता है, और आगे चलकर उनको और भी आश्चर्य हुआ ये जानकर, ये देखकर कि ये बच्चा न तो कुछ खाता था और न तो कुछ पीता था, और इसलिए शौच आदि का कोई कार्य का सवाल ही नहीं था। और इस तरह से ये बच्चा बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत था। और ऐसे समय बीतता गया बिना कोई आहार के, और ये बच्चा बड़ा होता गया, उसके शरीर का विकास होता गया, और इतने सुंदर रूप से उनका शरीर, शारीरिक अंगों का विस्तार हो रहा था, विकास हो रहा था, कि जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से खिला पिलाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर भी जैसे नहीं होता है, वैसे ये बच्चा बड़ा होते गया। और ये तो बड़ा अद्भुत दृश्य है, अद्भुत बात है। कितने बच्चे ऐसे जानते हैं आप जो खाते नहीं है, पीते नहीं है, और फिर भी उनका शरीर बढ़ता रहता है, वो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो बात तो सब जगह फैल गई, सभी ने सोचा अरे ये कौन, ये कैसा बच्चा है। अब तिरुवलन के घर के पास में, उसी गांव में, महिसार गांव में एक साधु रहते थे। वैसे वो शूद्र वर्ण के थे परंतु फिर भी थोड़े बहुत बुद्धिमान थे। वो बूढ़े थे, अपने पत्नी के साथ वहां पर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी जाकर इस बच्चे का दर्शन करना चाहिए, जहां तक मैंने सुना है ये बच्चा तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, बड़ा अद्भुत है। इसका मतलब है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, दिव्य है, कोई विशेष संत है ये, जो अभी इस बच्चे के रूप में प्रकट हुआ है। और जाते जाते चलो हमारे घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर जाए। इस तरह से दोनों ये पति पत्नी तिरुवलन के घर में आए, और जब बच्चे का दर्शन किया, उनका तेज, उनका प्रकाश, उनका चेहरा देखकर वो समझ गए कि ये कोई विशेष आत्मा है, महान संत है ये कोई। तो फिर बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से, आदर पूर्वक दर्शन करते हुए उन्होंने उस बच्चे के सामने दूध रखा। बच्चे ने ये प्रेम की भेंट स्वीकार की और पहली बार उस बच्चे ने दूध का पान किया और इस तरह से रोज ये पति पत्नी तिरुवलन के घर में आया करते थे, बड़े प्रेम से दूध लाकर और ये बच्चा पीता रहता, थोड़ा सा पी लेता और फिर संतुष्ट हो जाता, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन जब वो दूध लाए हर रोज की तरह है, तो उस बच्चे ने समझ लिया कि इनके मन में इच्छा क्या है, कामना क्या है। तो उन्होंने थोड़ा ही दूध पी लिया और अपना मुंह खोल के इशारा किया कि उस शूद्र साधु को और उसकी पत्नी को ये दूध, बाकी जो दूध रहा है वो पीना चाहिए। और उस बच्चे ने आशीर्वाद दिया उनको कि अब आपको एक बहुत अच्छा पुत्र होगा। अब ये थे बूढ़े और कई साल बीत गए थे, उनकी इच्छा तो थी बहुत सालों से, लेकिन वो सोच रहे थे कि अभी हमारी उम्र इतनी हो गई, अब क्या हमारा बच्चा होगा। तो उस बच्चे के आशीर्वाद से और उस दूध का पान करने से हुआ ये कि उनके मन और शरीर में फिर से यौवन की शक्ति आ गई, और थोड़े समय के बाद, थोड़े महीनों के बाद वास्तव में उनको एक बच्चा, उनके घर में एक बच्चे का जन्म हो गया, जिनका नाम उन्होंने रखा कनिकन्नन। और कनिकन्नन आगे जाके इस बच्चे के अर्थात तिरुमलिशय आलवार के शिष्य बने, उनके साथी बने और हमेशा उनके साथ में रहा करते थे। कनिकन्नन और तिरुमलिशय और एक राजा की लीला हम अगली बार शायद सुने, आज समय शायद नहीं मिले। यह भी एक सुंदर लीला है। तो आगे चल के ये भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत शुद्ध भक्त बने, तिरुमलिशय आलवार के साथी शिष्य बने। इस तरह से ये बच्चा 7 साल तक अपने घर में रहा तिरुमलिशय, और वहां पर रहकर बिना खाए हुए बड़े स्वस्थ अवस्था में रहता, लेकिन चिंतन मनन हमेशा कोई आध्यात्मिक विषयों के ऊपर करता। 7 साल की उम्र में बच्चा अपने घर को छोड़कर चला गया। अब लड़का था, उसकी इच्छा थी कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुझे कुछ तपस्या करनी चाहिए, यहां घर में बैठ के कुछ होगा नहीं। तो घर छोड़ के सारे देश भर में अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगा। उस समय उसकी आयु केवल 7 साल की थी। भ्रमण करते करते जगह जगह जाते, तरह तरह के साधुओं को मिलते, तरह तरह के अध्यापकों को, गुरुओं के पास जाते, ब्राह्मणों के पास, ऋषि मुनियों के पास जाते, जो भी उनके पास ज्ञान था वो सीख लेते। इस तरह से तिरुमलिशय सारे तरह तरह के आध्यात्मिक मार्गों में वो अनुभव लेते रहे। सबसे पहले दर्शन शास्त्र, षड् दर्शन जो है, तरह तरह के दर्शन वो पाए जाते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिका, पाणिनि, पतंजलि, वेदांत, सांख्य, ये सारे दर्शनों को पढ़ने लगे। फिर अष्टांग योग करने लगे, कई योग की सिद्धियां प्राप्त हो गई उनको, बड़े शक्तिशाली योगी बन गए। काफी लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, योगाभ्यास किया, बड़े निपुण दक्ष हो गए इसमें। यहां ही इतना ही नहीं, आगे चल के उन्होंने बौद्ध धर्म को भी थोड़े समय के लिए स्वीकार किया, थोड़े समय के लिए जैन धर्म को स्वीकार किया, और इस तरह से अलग अलग पथ को थोड़ी देर के लिए स्वीकार करते, पर उससे निराश होकर दूसरे पथ में चले जाते। इससे में इस तरह कई साल बीत गए, आखिर में वो शैव बन गए, शिवजी के उपासक बन गए, और इतने कट्टर बन गए तो उनका नाम हो गया शिवरक्कई, जो और वो शैव धर्म, शैव सिद्धांत का प्रचार बड़े अच्छे ढंग से करते, जोरदार करते थे। और इस तरह से उनका समय बीत गया। जगह जगह जाकर वो तर्क और वाद विवाद में ज्यादा रुचि लेते थे और दूसरों को वाद में हराते थे, अपने शैव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। तो ऐसे करते करते 700 साल उनके बीत गए इसी चीज में, योग के ध्यान में बैठते, कभी इधर तर्क करते, कभी उधर तर्क करते। आखिर में इन सब चीजों से निराश होकर उन्होंने सोचा कि मुझे अभी मौन व्रत धारण करना चाहिए। और मौन व्रत धारण करते करते वो जगह जगह जा रहे थे कि मद्रास के पास एक स्थान है मैलापुर, मैलापुर के पास वो वहां पर आए। और उस समय भगवान की योजना से तीसरे आलवार, पेय आलवार भी उसी इलाके में थे। तो उन्हें पता चला कि ऐसे एक विशेष योगी यहां पर आए हुए हैं जिनका जन्म ऐसे हुआ था, और ये खाते नहीं पीते नहीं, और बड़े शक्तिशाली योगी हैं ये, और तार्किक भी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता है। तो तिरुमलिशय का गुणगान वो जगह जगह सुन रहे थे, अपने मन में पेय आलवा सोच रहे थे कि इतना योग्य व्यक्ति, इतना बुद्धिमान, और ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये सब शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, न्याय, वैशेषिक, इनके सब पीछे पड़ के अगर ये आदमी वैष्णव बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए वास्तव में, तो कितना अच्छा होगा। ये आगे चल के कितना प्रचार कर पाएगा, सब जगह इस सिद्धांत को फैला पाएगा। तो इस इच्छा से पेय आलवार यहां उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास में आए। और जब आए पास में तो उन्होंने सोचा कि इनसे अब थोड़ा कुछ इनसे चर्चा किया जाए, लेकिन चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं थे। फिर थोड़े समय के लिए पेय आलवार ने कुछ किया नहीं। फिर एक दिन जब तिरुमलिशय बाहर निकले कुछ काम के लिए, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। यही पेय आलवार अपने छोटे से बगीचे में हैं, और बगीचे में एक पौधे के ऊपर वो पानी दे रहे हैं, और वो पौधे को कैसे जमीन में डाल रहे हैं, उसका जो जड़ है, पौधे का जड़ है वो ऊपर की तरफ है, और उसके जो पत्ते वगैरह हैं वो नीचे जमीन में डाल रहे थे। वैसे उल्टा करना चाहिए ना, मूल को जमीन में डालना चाहिए और पत्तों को ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा डाल रहे थे। साथ साथ एक ऐसे छोटा सा मटका उनके पास था जिसमें पानी था, जिससे ये पानी वो उस पौधे के ऊपर डालते जा रहे थे। परंतु इस मटके में इतने सारे छेद थे कि पानी सब बाहर गिर रहा था, पौधे के ऊपर भी नहीं गिरता था। तो इस दृश्य को देखकर तिरुमलिशय को बड़ा लगा कि ये तो बड़ा मजेदार दृश्य है ये। उनको हंसी आई, हंसने लगे और कहने लगे कि लगता है ये भक्त तो पागल है, ये जड़ ऊपर है, पत्ते नीचे हैं, पानी भी देखो कैसे दे रहा है, कुछ पानी वहां गिर भी नहीं रहा है। तो बस पे अलवर को एक चांस मिल गया, क्योंकि मौन व्रत टूट गया। इन्होंने कह दिया ना, देखो एक भक्त कितना पड़ता है, ये पागल है। फिर पे अलवर ने बोलना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से इस व्यक्ति को चर्चा में खींच लिया जाए। पहले तो वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे मौन व्रत की वजह से, लेकिन अब जबकि उनके मुंह से बात निकल गई, उनका व्रत भंग हो गया, उन्होंने कह दिया कि अरे लगता है ये भक्त तो पागल है। तो उस समय वो आलवार बोलने लगे, कौन पागल है, मैं या तुम? मैं तो स्वयं भगवान नारायण की पूजा करता हूं। नारायण तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के उद्गम है, सब कारणों के कारण है, परंतु तुम नारायण को नहीं, नारायण के पुत्र को भी नहीं, लेकिन नारायण के पौत्र, नारायण को पोते को की पूजा करते हो। आप तो जानते हैं कि भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए शिव जी, ऐसे भागवत में वर्णन आता है। और फिर उन दोनों के बीच में एक संवाद आरंभ हुआ, काफी जोरदार संवाद होता गया, जिसमें तिरुमलिशय जो कि बड़े बड़े विद्वान थे, वो भी अपने तर्क को सामने रख रहे थे। पोए आलवार वैसे कोई तार्किक नहीं थे, वाद विवाद में रुचि नहीं रखते थे। वैसे भक्तों को भी ज्यादा इन चीजों में रुचि नहीं है। वो जानते हैं तर्को अप्रतिष्ठ है, श्रुतयो विभिन्न न साव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, कि वैसे तर्क करने से तरह तरह के केवल किताब पढ़ के अपने बुद्धि से परम सत्य को जानने का प्रयास करना ये भी केवल व्यर्थ है, केवल श्रम है, व्यर्थ का श्रम है, इसमें कोई लाभ नहीं होगा। तो पोए आलवार को भी ऐसी रुचि नहीं थी। वृंदावन के षड गोस्वामी के बारे में भी हम ऐसे बार बार सुनते हैं कि कितने तथा कथित दिग्विजयी पंडित वहां पर आए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इनकार कर दिया कि हमें ऐसे दिग्विजय पंडित से कोई तर्क नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वो दिग्विजय पंडित जगह जगह जाकर ब्राह्मणों के पास, ऋषि मुनियों के पास जाते और वहां जाकर कहते कि मेरे साथ आप तर्क कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां दस्तखत कर लीजिए कि आप हार गए हैं तर्क में मेरे साथ। तो सभी को हरा देते। तो जब वो रूप गोस्वामी के पास आए तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे हम तो आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम क्या आपके साथ तर्क करें, आप तो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। ऐसे करके दस्तखत करके उनको भेज दिया, क्यों समय बर्बाद करना चाहिए। लेकिन जब जीव गोस्वामी ने देखा कि अरे हमारे गुरु का अपमान इस मूर्ख व्यक्ति ने किया है, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, तो उस समय जीव गोस्वामी ने उनसे वाद करके उनको हरा दिया था। पर रूप गोस्वामी बहुत नाराज हो गए थे उस समय, सनातन गोस्वामी खास करके। और रूप गोस्वामी ने फिर उनको बाहर भेज दिया वृंदावन के, कहा कि तुम यहां से चले जाओ, तो वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि तुम केवल प्रतिष्ठा चाहते हो, दूसरों को परास्त करने से तुम्हारा नाम बढ़ जाएगा कि तुम कितने बड़े विद्वान हो, तार्किक हो, यहां वृंदावन में यह भाव चलता नहीं है, चले जाओ यहां से। वापस उनको बुलवाया सनातन गोस्वामी की कृपा से। परंतु इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि फिजूल के जो तर्क हैं उनमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन पोए आलवार चाहते थे कि इस व्यक्ति को किसी न किसी तरह से इसके होश ठिकाने ले आना, सही सिद्धांत को इसे समझना चाहिए कि भगवान कौन है। हालांकि इतने बड़े तार्किक नहीं थे, परंतु बड़े बुद्धिमान थे, थे बड़े विद्वान, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अंदर भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध प्रेम था, शुद्ध भक्ति थी। इसलिए उनके शरीर का, उनके कांति, उनका तेज, उनकी जो भक्ति है, श्रद्धा, इन सब को देखकर ही तिरुमल ऋषि काफी प्रभावित हो गए थे वैसे। और वैसे जब संवाद बढ़ता गया तो फिर तिरुमल ऋषि के पास और कोई रास्ता नहीं रहा, तो वे आलवार के बातों को मान गए। वैसे तर्क करने वाले पथ के जो आचार्य हैं शंकराचार्य, मायावादी दर्शन का प्रचार करने वाले, उन्होंने भी प्रसिद्ध भज गोविंदम स्तोत्र लिखे हैं, जिनमें कि वो कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं 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 रक्षते दुक्रण कारणे, कि हे मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। केवल ये संस्कृत व्याकरण, न्याय और तर्कवाद में अगर तुम्हारा समय बर्बाद करते रहोगे तो ये सब व्याकरण इत्यादि मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे, इसलिए गोविंद को भजो। तो इसी तरह से पोए आलवार ने भी तिरुमल ऋषि को कृष्ण भक्ति का प्रकाश दिखाया। और उस समय से तिरुमल ऋषि आलवार के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। आज तक जो भी कुछ वो करते थे, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और नास्तिकवाद, तरह तरह के जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सब को त्याग दिया और कट्टर विष्णु भक्त बन गए। वास्तव में पहले तीन आलवार जो हैं, उन्होंने अपने हृदय से काफी सुंदर स्तोत्र लिखे थे, जिनको तिरुवंदादि कहते हैं। लेकिन तिरुमल ऋषि आलवार ने पहली बार, आलवारों के जहां तक का संबंध है, उन्होंने अपने स्तोत्रों में यह घोषणा की स्पष्ट से, एक बार नहीं लेकिन बार बार, कि भगवान कृष्ण या नारायण या विष्णु ही परम है और अन्य जो है वो उनके सेवक हैं। पहली बार आलवारों में ये बड़े जोर से हुआ। पहले तीन आलवारों ने केवल अपना प्रेम व्यक्त किया नारायण के प्रति, परंतु ये इतना स्पष्टीकरण नहीं किया कि वास्तव में परम सत्य है कौन। ये बहुत ज्यादा जोर तिरुमलिसई आलवार ने दिया, तो उसके बारे में हम कल अगली एकादशी में हम सुनेंगे ज्यादा। जब ये परिवर्तन हो गया तो पूरे आलवार को यह दृश्य दिखा कि अब ये शैव अब इतना शुद्ध वैष्णव बन गया है, तो उन्होंने उनको नाम दिया भक्तिसार। भक्तिसार मतलब जो भक्ति का सार है जिसके हृदय में, इस तरह से उनका नाम। तमिलनाडु में उनको तिरुमलिसई आलवार भी कहते हैं, कभी कभी भक्ति भक्तिसार भी कहते हैं। तिरुमलिसई अभी इस समय से आलवार बन गए। आलवार मतलब जो हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहा करते थे। तिरुमलिसई आलवार का जन्म वैसे मघा नक्षत्र के समय हुआ, पुष मास में, और भ्रमण करते करते वो इधर उधर फिरते, काफी कुछ तपस्या वगैरह करते, लेकिन इतने ऊंचे भक्त होने के बाद, इतने बड़े योगी भी होने के बावजूद, उस जमाने के जो ब्राह्मण वगैरह थे वो उनको स्वीकार नहीं करते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि इनको इनका जन्म जो है वो तथा कथित नीच जन्म था, शूद्र भी नहीं उससे नीचे। स्वयं अपने स्तोत्रों में तिरुमलिसई आलवार इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा जन्म चार वर्णों में नहीं हुआ, उसके नीचे वाले जन्म में हुआ। इस तरह से अपने तुच्छता को वो स्वीकार करते थे। वैसे तो हम जानते हैं कि जन्म से कोई तुच्छ नहीं होता, व्यक्ति कर्म से तुच्छ होता है, अपने विचारों से तुच्छ होता है। अगर जन्म से भी कोई बिल्कुल नीच परिवार में भी जन्म ले, परंतु अगर उसका हृदय शुद्ध हो, वो भगवान की भक्ति करता रहे, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, एक ब्राह्मण के लिए भी वो पूजनीय माना जाता है। इस तरह से तिरुमलिसई आलवार भक्ति में आगे बढ़ते गए और काफी समय तक वो घूमे, तपस्या किए, लेकिन जिस समय से पूरे आलवार का की भेंट हुई उनसे, जब से कि वो उनके शिष्य बने, तो उनका जो परिवर्तन हुआ वो इतना प्रभावशाली पड़ा उनके लिए कि वो एक जगह जाकर तपस्या करने लगे, भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। वैसे उन्होंने अपना योगाभ्यास छोड़ा नहीं, उस समय योगाभ्यास करते रहे, और उनके बारे में कितने सारे छोटी छोटी कहानियां हैं जो शायद आजकल के दृष्टि से देखा जाए तो हमें इनके ऊपर श्रद्धा रखना शायद मुश्किल हो जाए, पर छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये श्री संप्रदाय में पाए जाते हैं, श्री संप्रदाय के भक्त इन कहानियों को मानते हैं। वैसे पोरग्याय आलवार पर ज्ञान के प्रतीक हैं, ऐसा श्री संप्रदाय के लोग मानते हैं। भूतम आलवार पराभक्ति के, पराभक्ति मतलब आध्यात्मिक भक्ति, जो भक्ति भगवान के ऊपर केंद्रित है, पर ज्ञान मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और पे आलवार वो परमाभक्ति, श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति। लेकिन इन तीनों की जो भक्ति की पूर्णता है वो तिरुमलिसई आलवार में आई, ऐसे श्री संप्रदाय में उनकी टीकाकार कहते हैं। तो अपने हृदय में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करते हुए, इन सुंदर स्तोत्रों की रचना करते हुए वो अपने योगाभ्यास में भी लीन रहे, जिनको संक्षेप में हम सुनाएंगे। एक बार शिवजी पार्वती देवी के साथ में आकाश पथ से चलते जा रहे थे। शिवजी जानते थे कि ये कितने महान भक्त हैं, और तिरुमल श्री अलवार सुदर्शन चक्र के अवतार होने के नाते उनका स्वभाव भी थोड़ा गर्म था। मतलब जब वो बोलते कि नारायण ही परम है तो इतने जोरदार से बोलते, इस बात में बड़ा का बहुत कट्टर थे वो। और देवी देवता भगवान के सेवक हैं, इस बात के ऊपर भी वो ज्यादा जोर देते थे। तो जब शिव जी ऊपर से जा रहे थे, इन्होंने देखा और उनका जो छांव है, उनकी छाया है, जब नीचे जमीन पर पड़ी तो उस छाया से बचने के लिए तिरुमली शाही थोड़ा इधर हट गए। तो पार्वती देवी ने इस बात को देख लिया। तो पार्वती देवी ने शिव जी से पूछा कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़ा महान भक्त है, तो हमें ऐसे भक्तों के पास नहीं जाना चाहिए, हमें दूर से इनको प्रणाम करना चाहिए। तो पार्वती देवी ने कहा, नहीं नहीं मैं देखना चाहती हूं कि क्या है। तो उत्सुकता रहती है। तो फिर दोनों पास में गए, लेकिन जैसे शिवजी पार्वती देवी तिरुमली शाही अलवार के पास में आए, उस समय उन्होंने देखा कि वो एक पुराने फटे हुए कपड़े की सिलाई कर रहे थे, बहुत छेद हो गए थे और बैठ के वो सुई धागा लेकर सिलाई कर रहे थे। तो शिवजी जब पास में आए तो तिरुमली शाही ने देखा भी नहीं उनकी ओर। बाद में शिवजी ने उनको पूछा कि क्या कारण है कि आप हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं। तो उस समय तिरुमली शाही अलवर ने पूछा उनसे कि मैं आपसे क्या प्राप्त कर सकता हूं, आप मुझे क्या दे सकते हो, मैं तुम्हें जो चाहे वो वरदान मांग सकता हूं, दे सकता हूं तुम्हें, कोई वरदान मांगो। तो तिरुमली शाही ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। नहीं, फिर भी जब मैं आया हूं तुम्हारे सामने कुछ तो मांगो। तो फिर तिरुमली शाही अलवर ने पूछा कि क्या आप मुक्ति दे सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, मुझे वो चाहिए, मैं स्वीकार कर सकता हूं। तो शिवजी ने कहा, नहीं वो मैं नहीं दे सकता, वो तो केवल विष्णु दे सकते हैं। हरिवंश में स्वयं शिवजी भी कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशयः, कि केवल मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। वो कहते हैं, अगर चाहो तो तुम मुक्ति के लिए मांग सकते हो मुझे, परंतु मैं दे नहीं सकता, देने वाले केवल विष्णु हैं। तो शिवजी भी अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझसे मुक्ति मांगोगे, मोक्ष मांगोगे, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरी मृत्यु को क्या आप एक दिन से टाल सकते हो, तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म के अनुसार होगा। तो फिर तिरुमली शाही अलवर ने कहा, तो क्या वरदान दे सकते हो आप, ठीक है ये वरदान दो कि ये जो धागा है ये सुई के पीछे पीछे चलते रहे। मतलब वो एक अपमान जैसा हो गया। तो शिवजी को बड़ा गुस्सा आया। शिवजी ने कहा कि इस तरह से अपमान कर रहे हो। तो उन्होंने अपना तीसरा आंख खोल दिया और अग्नि बाहर आई, भीषण अग्नि। शिवजी ने कहा, जैसे मैंने कामदेव को एक बार भस्म किया था, उसी तरह से मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ये भीषण अग्नि बाहर आई शिवजी के तीसरे आंख से, बिल्कुल विचलित नहीं हुए तिरुमली शाही। अपने दाहिने अंगूठे के नीचे उनका एक आंख था जो उन्होंने खोल दिया, और उस आंख से ऐसे भयंकर अग्नि बाहर आई जो कि केवल शायद सृष्टि के संहार के समय होता है। और उस अग्नि के सामने शिवजी ने प्रकट की हुए आग को ऐसे लगता था कि ये जुगनू के बराबर है। जुगनू मतलब फायरफ्लाई, जो रात को चमकते हैं। और फिर शिवजी ने बादलों को, विशेष बादलों का आह्वान किया कि आओ आकर यहां इस आग को बुझाओ। सब जगह पानी 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 हो गया, लेकिन भक्ति सार विचलित नहीं हुए। उस समय शिवजी ने फिर सब कुछ रोक दिया और पार्वती से कहा कि देखो तुम लोग इतने उत्सुक होते हो, ये दिखाओ वो दिखाओ, अभी देखो इसका क्या परिणाम हुआ। काम का भगवान विष्णु के भक्तों के साथ हमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वैसे शिवजी तो स्वयं ही भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, तो ये सवाल उठ सकता है कि फिर तिरुमली शाही ने ऐसा क्यों व्यवहार किया। वैसे वो तो जानते थे कि शिवजी भक्त हैं, परंतु वो ये सिद्ध कराना चाहते थे, क्योंकि उस समय ये बात स्पष्ट तरीके से लोग जानते नहीं थे कि विष्णु ही या कृष्ण ही परम है, तो इस बात को सिद्ध कराना चाहते थे कि लोग भले शिव जी की पूजा करें, लेकिन परम सत्य तो शिव जी नहीं है, वो भगवान कृष्ण या विष्णु है। तो इस तरह से शिव जी वहां से चले गए पार्वती देवी के साथ में। दूसरी बार एक ऐसे घटना सुनने में आता है श्री संप्रदाय में कि जब वहां पर बैठे थे एक स्थान में तपस्या करते हुए, तो उनके ऊपर से एक योगी उड़ते हुए जा रहा था। उस योगी का नाम था शक्तिहरण। बड़ा शक्तिशाली योगी था ये। एक सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर बैठकर वो हवा में उड़ रहा था, इतनी सिद्धि थी उसके पास। और ऊपर जा रहा था, उसे पता नहीं था कि नीचे कौन बैठा है, क्या हो रहा है। काफी कई दूर जगह से आ रहा था, और आकाश में से जाते 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 अचानक उसने देखा कि यहां गाड़ी मेरी आगे नहीं चल रही है, शेर आगे नहीं जा पा रहा है, बस हवा में अटक गया उधर, आगे नहीं, पीछे नहीं, बाएं नहीं, कहीं नहीं, क्या बात है। इधर देखा, अरे योग शक्ति उसके कोई काम नहीं कर रही है। तो फिर उधर उधर देखा, आखिर नीचे देखा, तो देखा कि यहां योगी कोई बैठा हुआ है ध्यान में। फिर वो समझ गए कि मेरा छांव जो है उनके ऊपर पड़ गया है, और इसलिए मैं आगे में अटक गया हूं, पकड़ा गया हूं यहां पर, और मैं निकल नहीं पा रहा हूं। ये भी एक योग सिद्धि है, अष्टांग योग की। अष्टांग योगी जो है अपने सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक सिद्धि है कि वो छोटे से छोटा हो सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं, हल्के से हल्का हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पत्थर से भी भारी हो सकते हैं, अणु के समान छोटे हो सकते हैं। इन सिद्धियों को अणिमा, लघिमा, महिमा ऐसे कहते हैं। और ये सिद्धि एक भी है कि ऐसा योगी किसी भी व्यक्ति को उसके छांव के ऊपर पाँव रख के उसको पकड़ सकता है, उसको ताला मार सकता है। समझ लीजिए, आप चल रहे हैं और आपके छांव के ऊपर उस योगी ने पैर रख दिया, उसकी इच्छा कि आपको रोक के रखे, तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। जैसे आपके शरीर को पकड़ कर रखा हो वैसे ही हो जाएगा। तो ठीक यही हुआ। लेकिन इस समय तिरुमली शाही आलवार भक्ति सार, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, केवल उनकी भक्ति की शक्ति से और छांव उनके ऊपर आ गया तो पकड़े गए। शायद भगवान की योजना यह हुई होगी कि इस शक्ति हरण, योगी की शक्ति हरण करना चाहते थे वो। तो फिर वो नीचे आए, तो नीचे आकर इनको देखा, इनके सामने प्रणाम किया, और देखा कि तिरुमली शाही आलवार बिल्कुल फटे हुए गंदे कपड़ों में बैठे हैं, ज्यादा कपड़े है भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके लिए स्वर्ग लोक का एक अच्छा कपड़ा लाया हूं, वो आप पहन लीजिए। तो उस समय भक्ति सार ने क्या किया, अचानक उन्होंने एक ऐसा वस्त्र प्रकट कराया जो कि अनमोल रत्नों से बना हुआ था, जो चमक रहा था, और इसको बड़ा मूल्यवान था ये, जिसको देखकर ये शक्ति हरण बिल्कुल भ्रमित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। फिर और परीक्षा करना चाहता था शक्ति हरण भक्ति सार का। तो शक्ति हरण ने कहा कि मेरे पास जो रुद्राक्ष माला है, ये आप अपने गले में पहन लो, उससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो उस समय भक्ति सार ने अपने पास जो पद्माक्ष मतलब कमल के जो बीज के जो माला होते हैं वो, और तुलसी माला जो थी जिसके ऊपर वो जप करते थे और पहनते थे भी, उसको उन्होंने तुरंत एक सुंदर अनमोल रत्नों के हार में परिवर्तित कर दिया, बहुत ही मूल्यवान। और इसको देखकर शक्ति हरण तो हड़बड़ा गए, अब समझे कि और मुझे रहना नहीं चाहिए यहां पे, खतरा है मेरे लिए, इनके साथ में मुझे कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए। वहां क्षमा याचना की और उनके प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। उसी समय और एक जादूगर थे जो केरल देश से आए थे, जिनका नाम था कोंकण सिद्धन, और ये रसशास्त्र में बड़े निपुण थे। रसशास्त्र मतलब, रस मतलब मर्क्यूरी, और इससे कई चीजें बनाई जा सकती हैं। पहले ऐसे वैज्ञानिक हुआ करते थे जो एक पद्धति से किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकते थे, इसको एल्केमी कहते हैं इंग्लिश में। आजकल वैज्ञानिकों को ये, उनके पास ये विज्ञान नहीं है, अगर किसी के पास होता तो बस यहां उत्पाती हो जाता, तो अच्छा है कि नहीं है ये। तो इस व्यक्ति के पास, इस जादूगर के पास ये विद्या थी, तो इसने उनको छोटा सा एक छोटी सी गोली दे दी, उनको कहा कि इससे आपको बहुत सोना मिल सकता है। तो भक्ति साहब ने उत्तर दिया कि इससे कितना मिलेगा मुझे, लेकिन मैं आपको जो दूंगा उससे आपको करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत अपने पसीने का सूखा हुआ पसीना हाथ में लिया, थोड़ा कान में ऐसे हाथ डाला और उसका थोड़ा सा गोला बनाया और उसको दे दिया कि इसको देखो, ये आपका काम कर देगा। और वास्तव में वह पारस मणि बन गया, उसे बहुत सारा सोना निकल आया। तो इस व्यक्ति को भी पता चला कि ये भक्ति साहब तो कोई साधारण योगी नहीं है, हमें इनके साथ कुछ खेल नहीं खेलना चाहिए, हमारे हाथ शायद जल जाए अगर हम करें तो। और ऐसे सब घटनाएं होते रहे। तो हालांकि वो भक्त बन गए थे लेकिन योग अभ्यास करते थे, उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, अभी ये सब लोग आके मेरे साधना को भंग करते हैं, बीच बीच में आते हैं, मुझे हैरान करते हैं, तो चलो ये सब छोड़ देना चाहिए, अब केवल मैं भगवान के ऊपर ध्यान करके कहीं दूसरी जगह में चले जाऊंगा। तो फिर वो वहां पर चले गए और गजेंद्र सरोवर के पास वहां गए। जगह का नाम है तिरुवल्लिकेणी नाम की जगह में गए और वहां पे भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए बैठ गए। और उस समय तीनों आलवार, पहले तीन आलवार, पोग्या आलवार, भूतम आलवार, पे आलवार, घूमते 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 वहां पर पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे तो कैसे इनकी मुलाकात फिर से हो गई और आगे क्या हुआ और आगे कई सुंदर लीलाएं हैं इनकी, खास करके जो कनिकंदन के साथ में हुआ, बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह से भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकते, ठीक उसी तरह से भगवान भी भक्तों के बिना रह नहीं सकते और भगवान भी अपने भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। ये सुंदर भक्ति की भावना हम आने वाले एकादशी में, अगले एकादशी में सुनेंगे। और साथ साथ हम ये भी थोड़ा सुनेंगे कि तिरुमलेश्वर आलवार ने कौन से कविताएं लिखी, इन कविताओं में उन्होंने कौन से बातों को व्यक्त किया, और ये अगले एकादशी की चर्चा करेंगे। और उसके बाद में एक एक करके सारे आलवारों की चर्चा हम करते रहेंगे। एक एक की कथा बहुत सुंदर है, आज तक इनकी कथाएं दक्षिण भारत में बच्चा बच्चा जानता है, खास करके जो जिनके घर में ये संस्कृति है, तो बच्चे बच्चे इन आलवारों के बारे में जानते हैं। हालांकि आजकल टेलीविजन के प्रभाव से ये काफी कम हो गया है, परंतु फिर भी ऐसी कथाओं को करके हमारी भक्ति में भी काफी कुछ एक समृद्धि आ सकती है, समझिए एक रस आ सकता है। हम जानेंगे कि महान भक्तों ने किस तरह से भगवान की भक्ति की, किस तरह का संबंध उनका था भगवान के साथ। इस प्रकार से इन हम 12 अलवर आलवरों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अन्य जो भी भारत के महान भक्त रहे, शुद्ध भक्त, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके, जैसे तुकाराम महाराज, पुरंदरदास, नरसिंह मेहता और ऐसे कई हैं। क्योंकि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के बारे में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं रविवार के समय, बाकी समय, लेकिन इन आचार्यों के बारे में हमें ज़्यादा सुनने में नहीं मिलता। और ऐसे कई महान आचार्य हैं जो गौड़ी संप्रदाय में नहीं होते हुए भी, जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने और गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है, जैसे कि श्रीधर स्वामी, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वा मंगल ठाकुर इत्यादि, जयदेव गोस्वामी। तो इनकी जीवन भी हम सुनेंगे, बहुत सुंदर। हरेक वैष्णव आचार्य के जीवन सुनने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। तिरुमलेश्वर अलवार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब दर्शन होंगे, दर्शन के बाद प्रश्न उत्तर, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर बच्चों का कार्यक्रम है तो थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद प्रसादम। हरे कृष्णा। क्या ये सही है कि पुराने जमाने में जो विमान हुआ करते थे उनके लिए सल्फर ये रसायन केमिकल का उपयोग किया जाता था? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, विमान शास्त्र में मैं तो प्रशिक्षित नहीं हूं। तो ये कोई विमान शास्त्र में जो पढ़े हुए हैं वो शायद जवाब दे सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने का विमान वगैरह जो है, भले वो उन किसी चीजों से बने हुए हों, लेकिन वो सूक्ष्म नियमों के ऊपर चलते थे, केवल मंत्रों से चलते थे। आजकल स्टीयरिंग, बैटरी, इंजन, ये बहुत सारा कुछ है, लेकिन विश्वकर्मा इतने बुद्धिमान थे, इस तरह का ज्ञान था उनके पास, ऐसे विद्या विज्ञान था, बड़े सूक्ष्म तरीके से शहर के शहर बना सकते थे आसमान में। जो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से बनाया वो विमान तो क्या, एक सारा शहर था जो आसमान में उड़ता था, और उस शहर के अंदर तरह तरह के राजमहल थे, उद्यान थे, कुंड थे, सरोवर थे, सब कुछ था। तो ये है प्राचीन काल का विज्ञान। और आज के विज्ञान में छोटे छोटे एरोप्लेन भी विमान ऊपर आकाशमान में डालने में खतरा कितना होता है, कितनी बार गिर जाते हैं नीचे जमीन पर, क्रैश हो जाते हैं। और कोई प्रश्न?
आपने महिसर क्षेत्र की बात बताई, तो जब उसको तोड़ा गया तो एक जगह पे महिसर क्षेत्र और दूसरी जगह पे पृथ्वी को भी गया, तो महिसर क्षेत्र का मतलब वो भारी था, मगर बाकी जगह में हम आज तक सुनते थे कि जो चार क्षेत्र हैं, वृंदावन, द्वारका और नाथ जगन्नाथपुरी, ये सर्वश्रेष्ठ हम स्थान मानते थे, मगर ये उससे भी ज्यादा भारी
नहीं। परंतु अलग अलग पुराणों में हम ऐसे अलग अलग धामों की, तीर्थों की महात्म्य सुनेंगे। जब किसी विशेष तीर्थ की, धाम की महिमा चल रही है तो उस धाम को श्रेष्ठ बताया जाता है। वैसे भगवान चाहते थे यहां पर लीला हो और यहां पर आलवार वगैरह आए, ये सब योजना है, अंदरूनी कारण कई हो सकते हैं। हाँ सही, तो सबसे श्रेष्ठ धाम तो ब्रजभूमि है, क्योंकि वो साक्षात गोलोक वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत ही यहां पर ले आए भगवान कृष्ण। लेकिन पुराणों में ऐसे अलग अलग वर्णन किए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये वृंदावन से या मायापुर से या द्वारका से श्रेष्ठ है। और कोई प्रश्न? प्रश्न है कि ये पायस्वनी और अन्य जो नदियां हैं ये सब कहां पर हैं, ताम्रपर्णी इत्यादि। जब पहले दिन हमने आलवारों के बारे में चर्चा की थी, इसके बारे में चर्चा किया था, कितने एकादशी हो गए उसके लिए, चार, तीन चार एकादशी पहले, तो कहां पर हैं ये सब बता सकते हैं? आसाम, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, दक्षिण भारत में। अब सब भूल गए, द्रविड़ देश, द्रविड़ देश में है, सारे पश्चिम देशों में, पश्चिम भाग में है। पयस्विनी, पालार, कावेरी तो आप जानते ही हैं, अब इतना सब झगड़ा चल रहा है उसके लिए, पवित्र नदी को भी छोड़ते नहीं है। और ये बाकी सब कृतमाला, कृतमाला भी वैगई, वैगई, वैगई के नाम से जाना जाता है केरला तमिलनाडु में। वैसे पयस्विनी ताम्रपर्णी भी तमिलनाडु में है और थोड़ा भाग केरला में भी जाते हैं, पयस्विनी जैसे है। वर्णन है कि वास्तव में इन महान नदियों के, पवित्र नदियों के तट पर द्वापर के अंत में और कली की शुरुआत में ऐसे महान वैष्णव जन्म लेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे। तो अगला प्रश्न यहां पर यह है, किसी ने लिख कर दिया है, जब भक्ति सार एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करते थे और फिर से वो भगवान के भक्त बन गए, वैसे हमको अनेक देवी देवताओं के पास जाकर, भगवान के पास हम गए तो हमारे इतना दृढ़ता क्यों नहीं है? शायद प्रश्न ये है कि भक्ति सार यहां वहां गए तो हम भी क्यों नहीं इधर उधर घूम के आ सकते हैं कृष्ण के पास। पहली बात तो यह है कि हमारी आयु 700 साल की नहीं है, समय बहुत कम है हमारे पास, 70 भी हो या नहीं पता नहीं, 700 कहां से, 700 नहीं, 700 जब उन्होंने तीन आलवारों के साथ मुलाकात की उस समय 700 साल की आयु थी और बहुत आगे चल के भी रहे थे वो। ये पहली बात है कि हमें समय नहीं है। दूसरी बात कि क्यों समय हमें बर्बाद करना चाहिए, हम अगले एकादशी को सुनेंगे जब स्वयं तिरुमलेश आलवार अपनी प्रार्थना में बोलेंगे कि मैं जितने भी आज तक तपस्या की है उसका परिणाम, उसका फल यही है कि नारायण ही परम है, इस सत्य को मैं जान गया हूं बिना संशय के, और मैं अकेला ही जानता हूं, मैं ये घोषणा कर रहा हूं, तो आप सब भी सुनिए और इसको जानिए और आप भी नारायण के शरण में आइए। तो उनके तपस्या का फल, उनके बरसों बरसों के ध्यान का फल हमें आसानी से इतना मिल रहा है, तो हमारे ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की है, तो हमें भी जाकर इतनी तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि इस संसार में हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्रति बहुत ऋणी होते हैं, उनकी तपस्या पर ही तो ये सब चल रहा है, ये दुनिया चल रही है, नहीं तो कब की दुनिया खत्म हो जाती है, जितना पाप हो रहा है यहाँ। तो हमें तो सीधे भगवान कृष्ण का आश्रय ही लेना है, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
तिरुमला शाही आलवार तो भार्गव मुनि और कनकानंग अप्सरा के बेटे थे, तो भी वो अपने आप को निम्न जाति के समझ रहे थे, क्या जैसे भक्त समझता है कि वो पतित है, इस भावना वो कह रहे थे?
नहीं, वैसे हालांकि उनका जन्म भार्गव मुनि और कनकांग से हुआ था जो कि एक अप्सरा थी स्वर्गलोक की, परंतु उनके जो असली माता पिता थे उनको तो जन्म के बाद ही जंगल में छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन बाद में उनके जो माता पिता बने वो तो बहुत गरीब थे, उनकी कोई, उनका वर्ण बहुत नीचा था ऐसे लोग मानते थे, भौतिक दृष्टि है परंतु ऐसे थे, इसलिए इस दृष्टि से लोग उनको उस कुटुंब से उनका संबंध जोड़ते थे, इसलिए वहां के ब्राह्मण उनको मानते नहीं थे। अगले एकादशी को हम सुनेंगे कि कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को भी कई बार उनका मान भंग किया, और किस तरह से ब्राह्मणों को भी पता चला कि ये बहुत महान व्यक्ति है, वो अगले एकादशी को हम सुनेंगे।
शरणागति लेने के बाद के वास्ते क्या शिव मंदिर में जाना मना ही है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए?
प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, उसके बाद उसे क्या भगवान या उसको कोई शिव जी के मंदिर में जाना मना है क्या? मना नहीं है। अगर हम कहीं गए हैं और पास में शिव मंदिर हो तो हम जाकर अवश्य प्रणाम कर सकते हैं, इस दृष्टि से कि शिव जी महाभागवत हैं, वो महान वैष्णव हैं, इस दृष्टि से नहीं कि शिव भगवान हैं, या इस दृष्टि से नहीं कि हम शिव जी के पास जाएंगे और वो हमें कोई वरदान देंगे। तो कोई चैतन्य महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, जगह जगह जहां भी रास्ते में उन्होंने शिव मंदिर देखे वहां पे वो गए, कालहस्ती भी वो गए, श्रीशैल गए जहां महत्वपूर्ण शिव जी के मंदिर हैं, परंतु अपने सिद्धांत में वो स्पष्ट थे कि शिव जी श्रेष्ठ परम नहीं है, परम कृष्ण है, विष्णु है।
जूके टेम्पल में जब हम देखते हैं तो भी भगवान शिव करके लेकर होते, शिव जी करके, तो भगवान कैसे बोलते हैं शिव जी को?
भगवान शब्द ऐसे कई शक्तिशाली व्यक्तियों को भी, उनको भी ऐसे संबोधित किया जाता है, जैसे कई बार हम देखते हैं भागवत में नारद जी को भी भगवान कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह परम सत्य है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उनको कहा गया है। उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी कभी कभी भगवान कहा गया है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी या शिव जी या नारद मुनि ये परम सत्य है, परम सत्य नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।